बेसिकली अगर आप हिस्ट्री को देखें, कुरान मजीद के अंदर भी ट्रेंड्स ऑफ हिस्ट्री को देखें और वैसे भी जो रिटर्न रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमारे पास मौजूद है मुसलमानों की और इस्लाम की, उसको अगर आप देखें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि मसलन क्या ये समझा जाए कि हुकूमत हासिल करना इस्लाम का टारगेट है, जवाब जी नहीं, इस्लाम का टारगेट ये नहीं है। फिर हुकूमत क्या है? हुकूमत उस टारगेट को हासिल करने के लिए पेस बढ़ाने का एक टूल है, एंड दैट्स ऑल। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि अगर ये हासिल हो जाए तो उसका नतीजा क्या निकलना चाहिए कि जो ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है उसके पेस में इजाफा किया जा सके। जिस तरफ आप मूव कर रहे हैं तो मूव करने के लिए आपके पास एक तरीका ये हो सकता है कि मसलन आप अपने घर से निकले इमामबाड़े के लिए और पैदल चलकर आ जाएं। आप पहुंचेंगे लेकिन टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप बाइसिकल के ऊपर आ जाइए। आप बाइसिकल के ऊपर जब आप आएंगे तो टाइम आपका पैदल चलने के मुकाबले में कुछ कम सर्फ होगा, लेकिन अगर आप बाइक के ऊपर आ रहे हैं तो आपका टाइम थोड़ा और बच जाएगा। अगर आप गाड़ी के अंदर आ रहे हैं और ट्रैफिक खुला हुआ है तो आपका टाइम शायद कुछ और बच जाएगा। अब फ़र्ज़ कीजिए कि अब आपको हज के लिए जाना है, तो इन्हीं सारे एग्जांपल्स को थोड़ा और आगे की तरफ लेकर जाइए कि अगर आप शिप में जाएंगे तो शायद आपका वक्त और बचेगा, अगर आप हवाई जहाज़ में जाएंगे तो आपका टाइम और बचेगा, लेकिन अगर आप घोड़े के ऊपर सफ़र करके जा रहे हैं तो भी बहरहाल आप पहुँच तो जाएंगे लेकिन टाइम आपका थोड़ा ज़्यादा लगेगा। ये सब ठीक है अगर डायरेक्शन है मक्का की तरफ, अगर डायरेक्शन है हज की तरफ। लेकिन फ़र्ज़ कीजिए कि आपने डायरेक्शन ही तब्दील कर दी तो आप हवाई जहाज़ में भी सफ़र कर रहे हैं लेकिन आपका रुख मक्का की तरफ नहीं है, तो फिर आप जितनी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं अपने हदफ से दूर होते चले जा रहे हैं। हुकूमत हासिल होने के बाद अगर डायरेक्शन बदल गई तो फिर जितना पेस बढ़ेगा वो हदफ से दूरी की तरफ बढ़ेगा, हदफ की तरफ नहीं बढ़ेगा। मकसद क्या है? मकसद कुछ और है। हुकूमत हासिल करना मकसद कतअन नहीं हो सकता। इसीलिए अगर आप देखें कि अगर तारीख के अंदर हिस्ट्री के अंदर इक्तदार में कौन है? नमरूद। सामने कौन है? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। नबुवत के नमरूद के पास है। परवरदिगार आलम जब इंतखाब करता है तो उसका इंतखाब इस बात के ऊपर मौकूफ नहीं होता कि इक्तदार में कौन है, वरना तो नमरूद को नबी बनाना चाहिए था। ऐसा नहीं होगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने नबी डिक्लेयर किया। इक्तदार में फिरौन है। अगर हुकूमत मकसद होता तो बड़ा आसान सा हल ये था कि फिरौन को नबी बना दिया जाता। हुकूमत जिसके पास थी वही नबी होता, वही खुदा का नुमाइंदा होता, उसी को जिल्ले इलाही कह दिया जाता जैसा कि बादशाहों को बाद में कहा गया। लेकिन क्या वाकई ये परवरदिगार आलम का मंशा है? जवाब जी नहीं, ये नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया जा रहा है। क्या अंबिया में से कोई ऐसा है कि जिसको इख्तदार मिला? सुलेमान अलैहिस्सलाम, हमारे सामने उनकी एग्जाम्पल मौजूद है। तो ये नबी होने के बाद इख्तदार है या इख्तदार की वजह से नबी है? नबी होने के बाद इख्तदार है। अब जब ये नबी बन जाएंगे तो पेस बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ जाएगा? बट नेचुरल पेस बढ़ जाएगा। अब उनके पास जब इख्तदार है तो टूल्स उनके पास ज़्यादा हैं, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, चीज़ें उनकी कमांड में ज़्यादा हैं। एज अ रिजल्ट पेस बढ़ जाएगा। वो जो काम करना चाहते हैं उस काम को तेज़ी के साथ वो आगे बढ़ा सकेंगे। यही चीज़ आप पैगम्बर अकरम ख़त्मी मरतबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर की ज़िंदगी में इसको आप ट्रेस करें। पैगंबर अकरम जब ऐलान करते हैं नबुवत का तो इरशाद होता है कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो फलाह पा जाओ। क्या उस मौके पर इक्तदार ज़ाहिरी ख़त्मी मर्तबत के पास है? मक्का मुकर्रमा में पैगंबर अकरम के पास इक्तदार नहीं है। पैगंबर अकरम उस मौके पर गवर्न नहीं कर रहे हैं। मगर क्या पैगंबर अकरम नबी हैं? यकीनन। रसूल हैं? यकीनन। खातमुन नबीयीन हैं? यकीनन। हुकूमत इनकी होनी चाहिए? यकीनन। लेकिन है इनकी? जवाब जी नहीं, हुकूमत इनकी नहीं है। होनी इनकी चाहिए? यस। व्हाट इज और व्हाट ऑट टू बी, इन दो के दरमियान तो फर्क है ना। क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों के दरमियान एक गैप होता है। होना तो इस वक्त ये चाहिए कि सारी दुनिया कायनात मिलकर खुदाए वादा ला शरीक की इबादत करें, मगर क्या ऐसा हो रहा है? जवाब, ऐसा नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? इसलिए कि परवरदिगार आलम ने इंसान को इस दुनिया के अंदर इख्तियार दिया है। अगर ज़बरदस्ती करना होता तो फिर तो सारी चीज़ें फोर्सफुली कर ली जाती। फिर केस क्या है? केस ये है कि कन्विंस किया जाएगा। अब पैगंबर अकरम है, वो अपना पैगाम पहुँचाएंगे। कुरान मजीद हमें बयान करता है कि वमा अलर रसूल इल्लल बलागुल मुबीन, रसूल की जिम्मेदारी साफ साफ पैगाम पहुँचा देने के सिवा और कुछ नहीं है, कि वो पैगाम को साफ साफ पहुँचा दे, क्लियर। उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। फोर्सफुली गन पॉइंट के ऊपर मनवाना ये रसूल का जॉब नहीं है, ये नबी का काम नहीं है। लेकिन अब मैं आपके सामने एक सिनारियो पेश करता हूँ। केस ये कि पैगंबर एक बात बयान करते हैं, लोग सुनते हैं, दो में से एक बात होगी, या वो उसको कबूल कर लेंगे या उसको रद्द कर देंगे। اگر رد کر دیں گے تو پیغمبر اکرم کو ایک ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں؟ ایسا ہی ہوگا نا کہ پیغمبر اکرم پر پتھر مارے جا رہے ہیں، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور پیغمبر اکرم اپنی بات بیان کر رہے ہیں، یہی ان کا جواب ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتے رہیں، نہیں انل منکر کرتے رہیں۔ اب ذرا سا اس کو ویژولائز کیجئے گا، پیغمبر اکرم میسج دیتے ہیں، یہاں سے ایک نے قبول نہیں کیا، وہ ریزسٹنس دے رہا ہے یا سائلنٹ ہو گیا، دو میں سے ایک اس کا ریئیکشن ہوگا۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے کہ جو قبول کر لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہاں آپ اللہ کے رسول ہیں، میں کنونس ہو گیا۔ اب اس سے کیا تقاضا ہے؟ کہ وہ رسول کو فالو کرے۔ یہ اس کیمپ میں آ گیا، یہ دوسری طرف چلے گئے۔ دوسرا شخص آتا ہے، پیغمبر اکرم اس کو میسج دیتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتا، وہ اس طرف چلا گیا۔ تیسرا آتا ہے، قبول نہیں کرتا، اس طرف چلا گیا۔ چوتھا آتا ہے، قبول نہیں کرتا، اس طرف چلا گیا۔ رسول تو مسلسل پیغام دے رہے ہیں نا، یہ اس کیمپ میں جا رہے ہیں، یا وہ خاموش رہیں گے یا ریزسٹنس دیں گے۔ اس طرف جتنے بھی افراد آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم قبول کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ پیغمبر اکرم کے کیمپ کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ ان سے بھی یہی ہوگا، یہ صرف کیمپ میں شامل ہو رہے ہیں یا پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں؟ اگر یہ پوری کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں تو اب ہونا کیا ہے؟ پیغمبر اکرم ان کو کہتے جائیں گے، یہ فالو کرتے جائیں گے، کہتے جائیں گے، فالو کرتے جائیں گے۔ اگر یہ والا گروپ اسٹرانگ ہو گیا، میجورٹی میں آ گیا، ہونا کیا ہے؟ اگر آپ نیچرلی اس کو دیکھیں اور انالائز کریں، پیغمبر اکرم اس کو ٹارگٹ کے طور پر لے کے نہیں چلیں گے، پیغمبر اکرم کنونس کر رہے ہیں، مگر اس کنونسنگ کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ اگر پیغمبر اکرم کی اس کنونسنگ کے نتیجے میں ایک بہت بڑا گروپ تیار ہو جاتا ہے تو وہ آخر میں کیا کہے گا کہ اللہ کے رسول، اگر ہم اتنی بڑی تعداد میں آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تو اب آپ اپنی چیزوں کو پوری طریقے سے انفورس کریں، وی آر ان میجورٹی ناؤ۔ دس از واٹ ہیپن ان مدینہ۔ پیغمبر اکرم جب مائگریٹ کر کے مکہ سے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ مکہ میں سب سیٹ ہے اور پیغمبر جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ مکہ کے اندر چیزیں فیوریبل نہیں ہیں، دیٹ از وائی ہی ہیڈ ٹو موو فرام مکہ ٹو مدینہ۔ مائگریٹ انہوں نے اسی لیے کیا نا کہ وہاں پر سازشیں ہو رہی ہیں، پیغام پہنچایا جا چکا ہے، مگر میجورٹی آف دیم دے آر ناٹ ولنگ ٹو سپورٹ، دے آر ناٹ دیئر فار دا سپورٹ۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے پیغمبر اکرم کو؟ ایک آفر آئی مدینہ منورہ سے، پیغمبر اکرم نے اس کو جج کیا اور پیغمبر اکرم نے حکم خدا کے ماتحت مائگریٹ کیا مدینہ منورہ۔ کس لیے؟ صرف گورن کرنے کے لیے؟ جواب جی نہیں، اس میسج کو فردر پروپگیٹ کرنے کے لیے، پریچ کرنے کے لیے۔ وہاں والے جو افراد تھے ان کی میجورٹی اس بات کے لیے راضی ہو گئی کہ اللہ کے رسول آپ یہاں پر تشریف لائیں، ہم میں سے جو اکثریت ہیں وہ آپ کو رسول مانتے ہیں، ہم کو کوئی نہ کوئی حاکم چاہیے، وائی ناٹ یو؟ آپ ہمارے حاکم، آپ ہمارے رہبر، آپ ہمارے رہنما، آپ ہی کی حکومت ہوگی، پیغام تیزی کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ دیور رائٹ، بات صحیح تھی۔ اگر یہاں پر آگے مزید دیکھیں تو پیغمبر کیا کر رہے ہیں؟ وہی اپنے نبوت کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں، رسالت کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ حکومت کو کس لیے یوز کر رہے ہیں؟ ایز اے ٹول، ایک ٹول کے طور پر۔ اب ظاہر ہے حکومت آ گئی ہے تو دوسرے ویلفیئر کے کام بھی رسول کریں گے، جو دوسرے کام شہر کے ہوتے ہیں، جو شہر سے مربوط ہوتے ہیں، مختلف چیزوں کو آرڈر میں کرنا، اس کو بھی انجام دیں گے، اور اس کے بارے میں بھی جو وحی نازل ہوتی جائے گی اس کو انفورس کرتے چلے جائیں گے۔ یہیں پر قضاوت کے معاملات آ جائیں گے، ہاؤ ٹو سیٹل دا ڈفرنٹ کیسز، کس طریقے سے جج کرنا ہے، کس طریقے سے پینلائز کرنا ہے، کس طریقے سے پنش کرنا ہے، کس طریقے سے قصاص لینا ہے، دیت لینا ہے، یہ سب کچھ ہوگا۔ یہ سب کا سب انفورس کیوں ہو پا رہا ہے؟ اس لیے کہ حکومت ہے۔ اگر حکومت نہ ہوتی نہیں کر پاتے، بالکل صحیح بات ہے، نہیں کر پاتے، یہ ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم یہ فرماتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں دی۔ آپ کے پاس پوٹینشیل پہلے ہونا چاہیے، حالات کو فیوریبل ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ اس چیز کو کرتے چلے جائیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر کیوں پڑھیں گے؟ اور اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو پھر قرآن آپ سے کہتا ہے کہ اپنے آپ پر کیوں جبر کرتے ہو، بیٹھ کے نماز پڑھو۔ جب ہم تمہیں خود ایک پروویژن پرووائڈ کر رہے ہیں تو پھر اس کے بعد تم اس کو ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے ہو؟ ایک شخص ہے وہ بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ بیٹھ کر کیوں پڑھے گا؟ پھر وہ لیٹ کر نماز پڑھے گا۔ وہ لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو اشاروں سے پڑھے گا۔ یہ وہ ایک پوری سیکوینس ہے جو یہاں پر ہم کو نظر آتی ہے۔ جو چیز آپ نماز میں دیکھتے ہیں، جو چیز آپ وضو میں دیکھتے ہیں کہ وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کرو، یہی معاملہ حکومت کا بھی ہے۔ اگر آپ کو کسی وجہ سے یہ چیز نہیں ملتی ہے تو حاصل کرنا یہ آپ کا ٹارگٹ نہیں ہے، یہ آپ کا فریضہ نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کریں بائی ہک اور بائی کروک، کچھ بھی کر کے حکومت حاصل کریں۔ نو، دس از ناٹ دا کیس، دس از ناٹ ریکوائرڈ۔ آپ اپنا کام کریں، کسی موقع پر اگر یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے تو پھر اس کا پیس بڑھ جائے گا، ذمہ داری بھی بڑھ جائے گی۔ اگر آپ انقلاب اسلامی میں دیکھیں، اس میں بھی یہی ہوا۔ کیا امام خمینی سے پہلے جتنے بزرگان تھے وہ تبلیغ نہیں کر رہے تھے؟ کر رہے تھے، لیکن امام خمینی نے جس طریقے سے چیزوں کو ٹیک اپ کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایران کے اندر جو مومنین ہیں وہ فیور میں، سپورٹ میں، ایک اتنی بڑی تعداد، اس کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ जब अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर उस लेवल पर होगा, लोग कन्विंस हो जाएंगे, तो व्हाट विल बी द नेचुरल आउटपुट, उसका रिजल्ट निकलना ही है कि वो कहेंगे कि साहब ठीक है, अगर इतना अच्छा है, हम आप पर एतमाद करते हैं, तो व्हाई नॉट योर गवर्नमेंट, यू प्लीज कम। यहीं पर अगर आप देखें कि डेमोक्रेसी के हवाले से लोगों की हुकूमत लोगों पर लोगों के जरिए, यही है ना, लोगों की हुकूमत लोगों के पर लोगों के जरिए से, इस्लाम इसमें एक डिफरेंस रखता है, और वो क्या, लोगों पर हुकूमत लोगों के लिए, लेकिन लोगों के जरिए नहीं, बाय ऑलमाइटी अल्लाह, परवरदिगार आलम इंतखाब करेगा। मगर क्या उसका यह नतीजा निकलेगा कि किसी तरीके से पहले ही दिन से हुकूमत पर कब्जा कर लिया जाए? जवाब जी नहीं, ये नहीं, इसका फायदा ही नहीं है। अगर वो कन्विंस ही नहीं है तो आप किस चीज को इन्फोर्स करेंगे उसके ऊपर? जब वो कन्विंस नहीं है तो आप किस चीज को इन्फोर्स करेंगे? आप कन्विंस करें। अगर कन्विंस करने के बाद वाकई ये नतीजा निकल आता है जो मैंने मिसालें आपके सामने पेश की, तो उसका नेचुरल आउटपुट यही निकलेगा, उसका आउटकम यही होगा, उसका रिजल्ट यही होगा। हम देखते हैं कि इस्लाम जिस टारगेट को हासिल करने के लिए आया था, उसी की वजह से कुरान मजीद क्या कहता है, एक मरला है, कुरान कहता है कुफ्फू अयदीकुम वअकीमुस्सलात वातुज़्ज़कात। मक्का, क्या रसूल के ऊपर जुल्म नहीं हो रहा? हो रहा है। पैगंबर अकरम पर जुल्म हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। कुरान कहता है, सूरह निसा की आयत है, कुफ्फू अयदीकुम वो अकीमुस सलात व आतुस ज़कात, अपने हाथों को रोक लो, अपने हाथों को रोक लो। इस मौके पर रिटेलिएट करने का फायदा नहीं है, डोंट गो फॉर दैट, रिटेलिएशन में मत जाओ। कुफ्फू अयदीकुम व अकीमुस सलात व आतुस ज़कात, अपने हाथों को रोक लो, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो। उनको बहुत बुरा लगा। कुरान कह रहा है अलम तरा इलल लज़ीना क़ीला लहुम, ए हबीब, आपने देखा उन लोगों को जिनसे कहा गया कि हाथों को रोक लो, नमाज कायम करो, ज़कात दो? उनको बहुत बुरा लगा। हम क्या बातें कर रहे हैं जहाद की और मैदान में जाने की और तलवार की और इसकी और उसकी, और आप हमसे कह रहे हैं नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें? तो ये चीज़ें तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, नमाज कायम करो, ज़कात दो। वो इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि इस्लाम का टारगेट क्या है। इन ऑल द केसेस टिट फॉर टैट। आप अपनी तरबियत की तरफ कब मुतवज्जे होंगे? आप अपने अंदर एक बातिन की तत्हीर की तरफ कब मुतवज्जे होंगे? असल तो तस्किया नफ्स था, असल तो वो तकवा था कि जो परवरदिगार आलम इंसान के अंदर देखना चाहता है। वो अगर हासिल ना हो, अगर सामने वाले दरिंदगी का मुजाहरा कर रहे हैं और यहां से भी कुछ दरिंदों को भेज दिया जाए, इट्स ऑफ नो यूज। इस्लाम कहता है कोई फायदा नहीं हुआ, हमको इस दुनिया के अंदर कोई दरिंदों की लड़ाई थोड़ी करवानी थी। हमको तो वो अफराद चाहिए कि वो अंदर से इतने पाकीजा हो चुके हों कि शुजात के मफहूम को समझते हों कि वाकई बहादुरी किसको कहते हैं। सिर्फ गर्दन काट दो, आंख निकाल दो, उसके कान काट दो, उसके हाथ पैर मुसला कर दो, दिस इज नॉट कि जो इस्लाम आपसे डिमांड करता है या इस्लाम आपसे तकाजा करता है, ये वो चीजें नहीं है। इस्लाम कहता है अंदर से अपने आप को इतना पाकीजा तो बनाओ, नमाज तुमको भारी लगती है, जकात देने के लिए तुम तैयार नहीं, जो माली वाजिबात हैं वो तुमको भारी लगते हैं, ये माल की मोहब्बत के बाद, सजदे से दूरी के बाद कौन सा जिहाद होने वाला है मैदान के अंदर, कौन सा किताल होने वाला है मैदान के अंदर? ये तो वही अपने नफ्स के रिजा की खातिर इंसान मैदान में तलवार निकाल रहा है। इस्लाम को ऐसा मुजाहिद चाहिए कि जो मैदान में जाकर भी तलवार पर इतना काबू रखता हो कि जब हुक्म खुदा हो तो बीच मैदान में मुसल्ला बिछाकर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद कर सके। वाकई ये वो चीज है, यानी आप इसको फकत खिताबत तो नहीं, जंगे सिफिन के अंदर क्या अमीरुल मोमिनीन ने यह करके नहीं दिखाया? मौलाए कायनात ने यह चीज करके दिखाई, बीच मैदान में नमाज के वक्त मुसल्ला बिछा दिया, और जब किसी ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन ये नमाज का कौन सा वक्त है, तो उस मौके पर मौलाए कायनात ने जो जवाब दिया वो वाकई बहुत कीमती है। इसी नमाज को बचाने के लिए तो हम ये जिहाद कर रहे हैं। आप टारगेट देखिए कि क्या है। आप कैसे इस बात को फरामोश करते हैं कि सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहि सलातो व सलाम चौथे इमाम करबला के वाक़े के बाद, करबला के वाक़े के बाद जब कोई सवाल करता है, यानी असीरी का आलम है, जसारत जुर्रत आप देखें, चौथे इमाम से सवाल ये हो रहा है लिमनिल फत, ऐ सैयद सज्जाद बताइए कि फतह किसको हासिल हुई? इसमें तंज है, टीस किया जा रहा है, टॉन्ट किया जा रहा है, यानी जो दिल है उसको मजीद जख्मी किया जा रहा है। लिमनिल फत, फतह किसको हासिल हुई? और सैयद सज्जाद क्या जवाब देते हैं? सैयद सज्जाद कहते हैं थोड़ी देर के बाद जब आजान हो तो सुन लेना, अगर अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जा रहा है तो उसका मतलब यह है कि हुसैन जीत गए। वो जो दुश्मन है उसकी नजर है ही नहीं उस तरफ जिस तरफ सैयद सज्जाद देख रहे हैं, जिसको हम कहें कि विजन, वो उस तरफ मुतवज्जे ही नहीं है। और चौथे इमाम जो बात कह रहे हैं वो कुछ और ही है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, देखिए जिस मौके पर पैगंबर अकरम ने अपना पैगाम सुनाया, जो जो इनकार कर रहा है, पैगंबर को क्या करना चाहिए? बस तलवार निकालें और काट दें। पैगंबर अकरम ये नहीं कर रहे हैं। पैगंबर अकरम काफिर को काटना नहीं चाहते। पैगंबर अकरम ये चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो कि कुफर कट जाए और काफिर मुसलमान होकर बाकी रहे। क्या ये काम तलवार से होगा? तलवार तो दिफा के लिए, डिफेंस के लिए, कि जब सामने वाला आपसे जीने का हक छीनना चाहता है तो उस मौके पर एक मरहला आता है कि जहां इंसान अपने दिफा के लिए तलवार खींच लेता है। पैगंबर अकरम सूरह काफिरून क्या दस्तूर दिया? सूरह काफिरून क्या दस्तूर क्या दिया? सूरह काफिरून के अंदर परवरदिगार आलम कहता है, कुल ए हबीब इनसे कहिए, या अय्युहल काफिरून ए इनकार करने वालों, काफिर यानी इनकार करने वाला, वन हु रिफ्यूजेस, भाई आपने तौहीद का पैगाम दिया उसने इनकार कर दिया, आपने समझाने की कोशिश की वो नहीं समझ रहा, तौहीद को कबूल किया रिसालत का इनकार कर दिया, रिसालत को कबूल किया विलायत का इनकार कर दिया। जहां तक वो मान लेगा आपका हम सफर हो जाएगा, नहीं मानेगा इनकार कर रहा है। कुल या अय्युहल काफिरून ए हबीब इनको कह दीजिए ए इनकार करने वालों, पैगाम हमने पहुंचा दिया तुम इनकार कर रहे हो, हमने कन्विंस करने की कोशिश की तुम रिफ्यूज कर रहे हो, ला आबुदु मा ताबुदून, बस इतना समझ लो मैं उसकी इबादत नहीं करता कि जिसकी तुम इबादत करते हो, तुम उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूं, मैं आइंदा भी उसकी इबादत नहीं करूंगा जिसकी तुम इबादत करते हो, और तुम भी उसकी इबादत नहीं करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूं। यानी अगर मुझे उम्मीद होती कि अब भी इम्कान है तो मैं मजीद तुमको कन्विंस करता, मगर मुझे अंदाजा है कि अब तुम गौर व फिक्र के लिए तैयार नहीं हो। आखिर में क्या है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। इसका मतलब क्या है, नाउ लेट्स लिव टुगेदर पीसफुल को एग्जिस्टेंस के साथ, को एग्जिस्टेंस, तुम्हारा दीन अलग हमारा दीन अलग। इस मौके पर हम तुमको दावत देते हैं कि तुम अपने रास्ते पर रहो, हमको हमारे रास्ते पर रहना। हमको फोर्सफुली क्यों हटाने की कोशिश कर रहे हो? जब हम तुमको फोर्सफुली मजबूर नहीं कर रहे कि तुम इस्लाम कबूल करो, तुम हमसे क्यों तवक्को करते हो कि हम फोर्सफुली उस रास्ते को इख्तियार करें कि जो तुम हमको डिक्टेट करना चाहते हो? इस्लाम ये बात कहता है, मुझे बताइए कि इसके अंदर कहां प्रॉब्लम है? अगर आप कन्विंस करते चले जाएं और वो काफिर उसका कुफर खत्म होता चला जाए, वो मोमिन बनता चला जाए, वाकई अगर इतनी तादाद हो गई तो आपकी हुकूमत बन जाएगी, कर लीजिए काम, आपका पेस बढ़ जाएगा, आपकी स्पीड जो है बढ़ जाएगी, तेजी के साथ काम करेंगे। नहीं होता कोई बात नहीं, लकुम दीनुकुम वलियदीन, हम इससे ज्यादा के मुकल्लफ नहीं है। अगर जबरदस्ती करना होती तो परवरदिगार खुद करता, खुदा ने नहीं किया। हमें इस बात की जिम्मेदारी नहीं दी गई है कि हम तालिबान स्टाइल इख्तियार करें, बस काटो, अगर वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो उसका सर काट दो। ये इस्लाम का तरीकेकार नहीं है, ये इस्लाम का अंदाज नहीं है। इस्लाम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के नाम पर ये नहीं चाहता, वरना किसकी मजाल थी? पैगंबर अकरम हो या मौलाए कायनात हो या हसन मुश्तबा हो या हुसैन, किसकी मजाल थी कि पैगंबर अकरम का हक उनसे छीन सके? किसकी मजाल थी कि अमीरुल मोमिनीन से उनका हक छीन सके? किसकी मजाल है कि आज इस दुनिया के अंदर कोई शिर्क का इर्तिकाब कर सके, बुतपरस्ती कर सके? किसकी मजाल है? मगर बरादरान अजीज, क्या इस्लाम का ये मिजाज है? परवरदिगार आलम ये चाहता है कि इंसान को बस गन पॉइंट के ऊपर किसी तरीके से मोमिन बना दिया जाए? परवरदिगार ये चाहता है समझो, समझाओ, जितना तुमको समझ में आया है ज्यादा समझने की कोशिश करो, इसलिए कि मजीद समझने की गुंजाइश मौजूद है। जो तुमको समझ में आ गए आगे वालों को समझाओ, उतना समझाओ जितना तुम समझ चुके हो, जो समझ में नहीं आया है उसमें खामोश रहो, इसलिए कि गलत अगर आगे समझा दिया तो तुम्ही को समझ में नहीं आया तो तुम क्या समझाओगे? ये भी ना हो, पहले खुद समझो, जो समझ में आया है वो आगे समझाने की कोशिश करो। अगर कोई सवाल ऐसा आ जाए ये जो तुमको खुद समझ में नहीं आया, बोलो कि मुझे नहीं आता, मैं पूछकर बताऊंगा, मैं मालूम करूंगा और बताऊंगा। ये ना हो कि इंसान अपने ईगो की वजह से किसी गलत बात को इस्लाम से मंसूब करके आगे कम्युनिकेट कर दे या इम्पार्ट कर दे, ये इस्लाम नहीं चाहता।